Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse Number 10, 11, 12, and 13. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वीतं तं सजीवं, सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति, गोपेश गोपीककान्ता, श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानो सुतदेवी, प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते देते अंतिम आठवें प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि अंतकाले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, कि यदि अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इतना बताने के बाद भगवान ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यह जनरल प्रिंसिपल है कि मन में जो इच्छा होगी, जिसके विषय में आप सोचोगे, वो अंत समय में भी आपको याद आएगा, और उस जिसको भी आप अंत समय में याद करोगे, वही स्वभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करो, तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरा युद्धच, हर समय पहले मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करो। मामे वैशस्य संशय, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, इसके लिए आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करके योग में युक्त होना है और चित्त को और किधर जाने नहीं देना है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, परम पुरुष जो कि दिव्य है उनका ही चिंतन करना है। और कल भगवान ने हमें श्लोक नंबर 9 में बताया कि परम पुरुष भगवान का चिंतन करने के लिए क्या सोचना है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरिया समनुस्मरेध्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, कि वो कविम है अर्थात सब कुछ जानते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष भगवान का ध्यान कैसे करें, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में वो भगवान का ध्यान करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ध्यान के विषय में बताया। अब ध्यान ये जो किया करेगा, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त हो, वो योग मिश्र भक्त भी हो सकता है, वो ज्ञान मिश्र भक्त भी हो सकता है, वो कर्म मिश्र भक्त भी हो सकता है। अब शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि वास्तविक भक्ति क्या है कि केवल दूसरी समस्त जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको समाप्त करके, उनको साइड में करके, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो है शुद्ध भक्ति। लेकिन यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, शुद्ध भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया 7.3 में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से भी कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करता है। अब देखो, हजारों में से एक ने सिद्धि प्राप्त करने की के लिए प्रयत्न किया, उनमें से एक कृष्ण के पास गया और वो जो बाकी 999 बचे उसने क्या किया। अब देखो शुरू में क्या हुआ, हजार में से एक ने प्रयत्न किया, बाकी 999 तो भौतिक दुनिया में ही रहे, वो तो सिर्फ आहार निद्रा भाई मैथुन में ही कार्य करने लगे। लेकिन जो आगे गए, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, उनमें से भी एक आगे गया कृष्ण के पास, उनमें से भी तो 999 बचे ना, तो वो क्या करेंगे, वो कृष्ण के पास डायरेक्ट से कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते, बल्कि योग मिश्र भक्त होते हैं, कुछ ज्ञान मिश्र भक्त होते हैं, कुछ कर्म मिश्र भक्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान अभी हमें उनके विषय में बता रहे हैं जो कि योग मिश्र भक्त भक्ति करते हैं। योग यानी जो अष्टांग योग की क्रिया होती है ना, जिसमें क्या होता है, आपको पता है योग में जो प्राण होता है ना, कुंडलिनी, उसको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठा उठाते 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 अज्ञ चक्र पर लेकर आते हैं, और उस मतलब अज्ञ चक्र पर लेकर आने के बाद और फिर इस तरह से परमेश्वर के स्मरण में वो अपने आप को लगाता है और इस तरह से वो मुक्ति की राह में आगे जाता है। लेकिन क्योंकि ये शुद्ध भक्ति नहीं होती है, योग अब इसके अंदर भक्ति के अंदर योग इंक्लूड होता है, शुद्ध भक्ति नहीं होती है। अब शुद्ध भक्ति क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 में। वहां से शुरू होगा, 10, 11, 12, 13। इसमें योग मिश्र भक्ति के विषय में बताया जाएगा। और ये योग मिश्र भक्ति है तो जाहिर सी बात है इससे कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है, इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है अगर ये बिल्कुल सुचारू ढंग से इनको सही तरीके से किया जाए। लेकिन उससे क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी और उसमें हम मतलब जीव जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला ये सिस्टम है। लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे, कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे वो तो भगवान ने पहले ही बताया कि अंतकाली च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, खाली मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो तो ही आप ना मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसके विषय में 14, 15, 16 आएंगे। अभी जो योग मिश्र भक्त जो जिस तरह से अंत समय में भगवान का ध्यान करते हैं या पूरा जीवन जिस प्रकार से ध्यान करते हैं उसके विषय में भगवान हमें बता रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हर प्रकार के जैसे भी भक्त हो, चाहे योग मिश्र हो, चाहे ज्ञान मिश्र हो, चाहे कर्म मिश्र हो, सबको स्वीकार करती है। क्योंकि जे न के न प्रकार है वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके विषय में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 10 में भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुष उपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। शब्दार्थ, प्रयाण काले अर्थात मृत्यु के समय मनसा अचलेना, मन से अचलेना मतलब अचल या दृढ़, भक्त्या युक्तो भक्ति से लगा हुआ, योग बले योग की शक्ति द्वारा च भी एव निश्चय ही, भ्रुवोर मध्ये यानी दोनों भवों के मध्य में प्राणम प्राणों को आवेश स्थापित करे सम्यक पूर्णतया सतम वह उस परम पुरुष यानी दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। बहुत ही सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना यानी कि जब मृत्यु का समय आए तब मन को बिल्कुल अचल कर दे, दृढ़ कर दे और किसमें भक्त्या युक्तो भक्ति से युक्त करे, भक्ति माना भगवान की भक्ति में युक्त करे, योग बलेना उसके पास शक्ति, किस चीज की बले माना शक्ति, किस चीज की शक्ति होगी योग की शक्ति। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्त्या युक्तो योग बले, योग की शक्ति से भक्ति के साथ यानी कि योग की शक्ति भी यदि आप भगवान की भक्ति के साथ नहीं करोगे फिर ये जो प्रोसेस है ना वो आपका काम नहीं करेगा। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेना चैव, और करना क्या है, ब्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों ब्रों के ये आईब्रोज है ना उनके सेंटर में प्राण को टिकाना है यानी कि अज्ञ चक्र तक अपने प्राण को लेकर आना है। सतम पुरुषम सतम परम पुरुषम उपायति दिव्यम, और इस प्रकार से परम पुरुष भगवान का ध्यान लगाएगा वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। अनुवाद, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच यानी अज्ञेय चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी वो विधि बता रहे हैं कि किस तरह से 6 चक्र होते हैं, उसमें प्राण जो है पहले नीचे से ऊपर आते 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 अंतिम चक्र यानी अज्ञा चक्र पर आते हैं, जहाँ भवों के बीच में लेकर आना पड़ता है और इस तरह से ध्यान किया जाता है। यहाँ पर इसके बाद श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बताएंगे कि परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही भक्तों के लिए सरल बात बताई है कि भक्त क्योंकि निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है, कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, तो अंत समय में उसको ये अज्ञेय चक्र तक प्राण लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको योग अभ्यास के बिना ही भगवान खुद ब खुद याद आ जाते हैं। अब अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकालना है कि भगवान की स्मृति हो आए, भगवान को याद कर सके अंत समय में। लेकिन भक्त क्योंकि सदैव निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है तो उसको ये योग की विधि का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को कैसे किया जाएगा वो आगे 14 श्लोक में बताया जा गया। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के अभाव में चाहे वो षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। अब देखो योग का मतलब होता है जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना। अब चाहे कोई भी हो वस्तु, कोई भी प्रोसेस, कोई भी हो, षट चक्र योग हो या भक्ति योग हो, यदि इसके साथ साथ अब भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते हो, योग नहीं है। देखो यहाँ पर भी बताया गया भक्ता युक्तो योग बलेना, योग के बल से आपको भक्ति से युक्त होकर योग की शक्ति से आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये योग बलेना शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के अभाव में अगर आप भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते नहीं हो तो चाहे आप षट चक्र योग करते हो या भक्ति योग कर रहे हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगा। भगवान के साथ एक संबंध तो आपको जोड़ना ही है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पूरी जिंदगी जो मेरे मन में आएगा वो करूँगा और अंत समय में भगवान को याद करूँगा। कोई भी मृत्यु के समय भगवान का सहसा अचानक से, ऐसा नहीं है कि बस अभी मैं मर रहा हूँ तो मैं स्मरण कर रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात कि मरने का समय भी कोई तय नहीं है, लेकिन अगर आप उस समय बीमार हो, हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर कह दे कि भाई बस अभी मरने वाला है, तो भी ये जरूरी नहीं कि आपको पता चल गया कि अभी मरने वाले हो तो आपको भगवान का स्मरण हो आएगा। भगवान का स्मरण करना इतना सरल नहीं है, उससे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। पूरी जिंदगी अभ्यास करेंगे तब कहीं जाके अंत समय में भगवान याद आएंगे, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यंत ही विचलित हो रहा होता है, बहुत ज्यादा मन विचलित हो रहा होता है। पूरी जिंदगी जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को इम्पोर्टेंस दी होती है ना, तो वही वस्तु और व्यक्ति हमें स्मरण हो रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं। भगवान क्योंकि पूरी जिंदगी याद नहीं किया तो फिर अचानक से थोड़ी ना अंत समय में याद आएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी न किसी योग स्पेशली भक्ति योग से जोड़ना पड़ेगा। भक्ति योग क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये भक्ति योग है। भगवान को प्रसाद अर्पण करना, भगवान की विग्रह सेवा करना। इसलिए भक्ति योग से यदि हम जुड़ेंगे तो अंत समय में हम भगवान को स्मरण कर सकेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान की विग्रह को घर में रखना चाहिए। अगर ये ना श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप भगवान की विग्रह की सेवा सही तरह से प्रॉपरली नहीं कर सकते हो तो भगवान के चित्र यानी तस्वीर भगवान के घर में रखने चाहिए और प्रसाद अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस भगवान के विग्रह बना कर रख दिए जाएं, उनमें प्राण प्रतीक्षा कराई जाती है और उस समय जब प्राण प्रतीक्षा होती है, महाअभिषेक होता है, तो भगवान साक्षात उस विग्रह में प्रवेश करते हैं। तो फिर हमें भगवान की सेवा भी इतनी ही दृढ़ता के साथ और बहुत ही सावधानी के साथ करनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम देखा देखी में बड़े बड़े विग्रह मार्बल के बनाकर घर पे रख दें और फिर हमसे सेवा भी नहीं हो सकती सही तरह से। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस युग में महत्वपूर्ण क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की छोटी विग्रह जो है ना, मतलब 8 इंच तक भगवान की विग्रह रखनी चाहिए घर में, और कोशिश करनी चाहिए कि वो पीतल की विग्रह हो। पीतल होता है, अष्ट धातु होता है उसकी बनी हुई। और इस युग में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें गौर निताय की विग्रह को घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि गौर निताय की सेवा इतनी कठिन नहीं होती है, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। यदि आप घर में केवल कीर्तन करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे, तो इससे भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन राधे कृष्ण की सेवा और स्पेशली जो बड़े विग्रह होते हैं मार्बल वगैरह के, तो उनमें हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होता है। तो हमें थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हम भक्ति करें और भगवान की अगर छोटी सी भी विग्रह घर पे होगी तो हमें क्या करना, छोटी बल्कि होगी तो क्या करेंगे, रोजाना उनका श्रृंगार कर सकेंगे, उनको स्नान करा सकेंगे, वस्त्र बदल सकेंगे, अच्छी तरीके से सेवा होगी। और अगर हम इस तरह से बहुत सारे विग्रह घर पे रख देंगे तो फिर सेवा करने में ही हमारा समय बीत जाएगा और हम श्रवण नहीं कर सकेंगे, जप नहीं कर सकेंगे। तो हमें मंदिर में है ना बड़े विग्रह रखने चाहिए, घर में छोटे विग्रह रखने चाहिए अष्ट धातु के, और स्पेशली गौर निताय के विग्रह रखने चाहिए, ऐसा श्री प्रभुपाद जी। क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है। अब हम क्योंकि बहुत ज्यादा पतित जीव हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको कृपा करने के लिए आए हैं, तो फिर हमें उनकी विग्रह की सेवा करके, क्योंकि वो हमारे अपराधों को नहीं देखते हैं, तो फिर है ना उनकी सेवा करके हमें भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। ये इस युग के लिए संस्तुति है। बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि अंत समय में जो भक्ति से युक्त होकर योग की शक्ति से प्राणों को भवों के बीच में रखता है और इस प्रकार से भगवान को स्मरण करता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ तक कहने के बाद भगवान को ऐसा लगा कि अर्जुन को पता नहीं ये योग अभ्यास आता भी है या नहीं आता है। तो अर्जुन के मन में भी ये सवाल आता है कि पता नहीं कैसे है ये प्राणों को सेंटर में, भवों के सेंटर में लाना है और इस तरह से योग का अभ्यास करना है, ये पता नहीं कैसे होता है, मुझे सही तरह से आता ही नहीं है, आप थोड़ा और भी समझाओ। तो फिर भगवान श्लोक नंबर 11 में जो है वो इस चीज को, इसकी विधि को सही तरह से समझा रहे। भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यद्यतयो वीतरागा यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो भगवान कहते हैं संग्रहेण प्रवक्षे। संग्रहेण प्रवक्षे मतलब अब तुम्हें सही समझ में नहीं आता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, मैं एकदम संक्षिप्त में तुम्हें बताऊंगा। संक्षिप्त संग्रहेण प्रवक्षे, संक्षिप्त में तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? यद अक्षरम वेद विदो वदंती। यद अक्षरम, अक्षरम कहते हैं अक्षर जो ब्रह्म है उसको। तो यदि अक्षर की प्राप्ति करनी है, यद अक्षरम, यदि अक्षर की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है? वेद विदो वदंती, वेद यानी उपनिषद का अध्ययन करना है। ठीक है, वेद विदो यानी वेदों का ज्ञाता, वदंती वो कहते हैं। विशंति यद्य तयो वीतराग, विशंति का मतलब होता है प्रवेश करते हैं, यद यानी जिसमें, यतया बड़े बड़े मुनि, वीतरागा यानी संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी। अब जो बड़े बड़े मुनि हैं, संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और उनके लिए क्या करते हैं वो? यदिच्छन्तो यानी जो इच्छा करते हैं कि मैं अभी अक्षर की प्राप्ति करूं यानी ब्रह्म की प्राप्ति करूं, तो वो वेदों का अध्ययन करने वाले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं? ब्रह्मचर्यम चरंती। ब्रह्मचर्यम का मतलब होता है वो पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होता है इस प्रोसेस को करने के लिए। कौन से प्रोसेस को? जो हमने श्लोक नंबर 10 में पढ़ा ना, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव ब्रोवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो यो ये अज्ञ चक्र ऊपर तक कहना, प्राणों को लेकर आना और फिर भगवान में ध्यान लगाना, उसके लिए प्रोसेस क्या है? ब्रह्मचर्यम चरंती। ब्रह्मचर्य मना पूरी जिंदगी किसी भी फीमेल के साथ कोई संबंध नहीं, कोई बात भी नहीं, उसकी और कोई आकर्षण भी नहीं, पूरी जिंदगी उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है तत्ते पदम, और फिर उस तरह से वो उस पद को प्राप्त करते हैं। अनुवाद देखिए, जो वेदों की ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और अब भगवान कहते हैं कि इस विधि को संग्रहेण प्रवक्षे। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अब भगवान संक्षिप्त में वो बताएंगे कि किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मुक्ति किसी को किस तरह से प्राप्त हो सकती है। अब वो तो भगवान आगे बताएंगे। इसमें जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बताया है उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि क्या वो अभ्यास इस कलयुग में संभव है अथवा नहीं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। षट चक्र योग बता दिया 10 श्लोक में, जिसमें प्राण को भवों में मध्य में स्थिर करना होता है ना, भ्रौर मध्य प्राणमावेश सम्यक। तो ये पहले बता दिया श्लोक नंबर 10 में। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते। अब क्योंकि भगवान ने सोचा पता नहीं अर्जुन को आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर अब विधि बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। अब जो निर्विशेषवादी है, अब ब्रह्म के तो दूसरे भी हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो अक्षर या ओंकार यानी ब्रह्म जो निराकार है उसको ही सब कुछ मानते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो उसके विषय में भगवान यहाँ पर बताते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान की वैदिक पद्धति में शास्त्रों को प्रारंभ से ही गुरु के पास रहने के लिए रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म का की शिक्षा दी जाती है। अब वैदिक पद्धति जो हमारी है उसमें क्या किया जाता था, शुरू में ही अपनी संतान जो होती थी उसको गुरु के निर्देशन में भेज दिया जाता था और वहाँ पर कोई भी सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जो शिष्य होते थे वो सारा। अब तो क्या है, को एजुकेशन है, सारे लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं और ऊपर से टीवी कंप्यूटर में इतनी सारी अश्लील दृश्य देखते हैं तो ब्रह्मचर्य शुरू से ही खंडन हो जाता है। लेकिन इस पहले क्या हो जाता है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों यानी जो स्टूडेंट्स होते थे उनको प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती थी, शुरू में ही उनको सिखाया जाता था। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी थी ये तरीका कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था और इस तरह से वो आध्यात्मिक जीवन में विकास करते थे। आगे श्रील प्रभुपाद जी ने किंतु लिखा है, किंतु माना अब खास बात बताएंगे कि किंतु इस समय ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अब तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन ही संभव नहीं है। विश्व की का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। शुरू से ही छात्र जीवन यानी अभी स्टूडेंट होता है और तभी से ही वो ब्रह्मचर्य उसका खंडन हो जाता है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, अब यहाँ पर संसार में बहुत सारी शाखाएं हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ पर ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करके बच्चों को शिक्षा दी जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अब अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये प्रोसेस करना बहुत ज्यादा कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान श्री चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने बताया है कि इसमें क्या करना पड़ता है, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लेकिन इस कलयुग में तो ब्रह्मचर्य को पालन करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो बता के चले गए, फिर वापिस से भगवान ने सोचा कि इस कलयुग में तो कोई ये रूल्स को फॉलो कर ही नहीं सकेगा, फिर वो कैसे सिद्धि प्राप्त करेगा। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, अब मैं खुद ही दूसरी दफा जाता हूँ और फिर मैं दूसरा आदेश देकर आता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अब इन श्लोकों में श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 15 तक श्रील प्रभुपाद ने 4 बार पूरा महामंत्र यानी लिखा है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे कि भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के इस पवित्र महामंत्र को जप करना। तो ये भगवान ने जो प्रोसेस बताया है, अभी भगवान आगे खुद ही बताएंगे कि ये कठिन है, मैं आपको दूसरा सुलभ रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं आगे देखिए श्लोक नंबर 15 में अब भगवान समाधि की स्थिति के विषय में बताएंगे कि आस्थो योग धारणम, धारणा के बाद समाधि की स्थिति आती है। तो अब क्या उसमें क्या होगा, सारी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरा रोकना है
और मन को चित्त में समा देना है, ये योग का अभी मैंने आपको बताया कि योग मिश्र भक्ति में किस प्रकार से भगवान पे ध्यान लगाया जाता है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। पहले क्या बताया कि प्राणों को भवों के बीच में रखा जाता है और इस तरह से परम पुरुष का ध्यान किया जाता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वो श्लोक नंबर 11 में बताया। और श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्यम् च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिद्धि निरुद्ध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य। सर्वद्वाराणि यानी शरीर के जितने भी द्वार हैं। अब इस शरीर को नौ द्वार बताया जाता है, भगवान ने पहले भी बताया नव द्वार पूरे देही, नौ द्वार हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं और कर्म इंद्रिय हैं। तो यहाँ पर क्या किया, संयम्य उनको वश में करना है, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं उनको वश में करना है। मनोरिधि निरुद्ध, मन को हृदय में बंद कर देना है। मन इधर उधर भागता रहता है घोड़े की तरह, जैसे मूंज और घोड़ा होता है वो भागता रहता है, रुकता नहीं, कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको आपको कंट्रोल करना है, मनोरिधि निरुद्ध्य में मन को हृदय के अंदर कैद कर देना है। और मूर्धनि यानी सिर पर अध्याय यानी स्थिर करके, आत्मना यानी अपने प्राण, प्राणाम यानी प्राणवायु को, अपनी प्राणवायु को सिर पर स्थित करना है। योग धारणा मतलब इस प्रकार से योग में स्थित हुआ जाता है। किस प्रकार से हुआ जाता है, सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे जितने भी द्वार हैं, जितने भी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां उनको कंट्रोल किया जाता है। मनोरिधि निरुद्ध, मन को हृदय के अंदर कैद कर दिया जाता है। और मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम, अपने जो आत्मा है अपने प्राण है उसको सिर पर स्थित किया जाता है और इस तरह से योग में स्थित हुआ जाता है। अनुवाद देखिए, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रिय क्रियाओं को यानी सर्वधाराणी संयम्य, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। अब भगवान आगे का प्रोसेस बताते हैं, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद सारी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद कर दो, इंद्रियों से कुछ नहीं करना है। सर्व द्वाराणि संयम्य, सारी इंद्रिय क्रिया को बंद कर देना है और मन को क्या करना है, हृदय के अंदर और प्राण वायु को सिर के अंदर केंद्रित करना है। इस तरह से आप योग में स्थित हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि योग मिश्र भक्ति भगवान बता रहे हैं, तो उसमें स्थित कैसे हुआ जाता है वो भगवान ने यहाँ पर बताया। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वारों को बंद करना होता है। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। अब देखो, योग में स्थित होने के लिए प्रत्याहार धारणा, समाधि, ये सब स्टेप होते हैं ना, तो ये प्रत्याहार क्या होता है, सारी इंद्रिय क्रियाओं को बंद करना होता है, इसको प्रत्याहार कहते हैं। इसमें ज्ञान इंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता है। अब देखो योग में और भक्ति में क्या फर्क है, योग अभ्यास जब किया जाता है तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, इनको क्या करना होता है, पूरी तरह से वश में किया जाता है और किसी भी तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता है। और भक्ति में क्या किया जाता है, नेत्रों को दर्शन दिए जाते हैं, किसके, भगवान के, कारणों को भगवान की कथा श्रवण करानी जाती है, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन श्रवण कराने की परमिशन, जिह्वा को भगवान के प्रसाद खाने की परमिशन, और स्पर्श इंद्रिय को भगवान के चरण छूने की, भक्तों के चरणों को स्पर्श करने की, इस तरह से छूट दी गई है। अब उनको रोकना जो है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे भगवान ने बताया था श्लोक नंबर 2.59 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तते कि भले इंद्रियों को आप रोक लो, इंद्रियों को उनके विषयों से आप हटा लो, फिर भी निराहारस्य देहिना, निराहारस्य का क्या मतलब होता है कि निषेध आत्मिक प्रतिबंध से भी, दूर रहने से भी हृदय के अंदर एक इच्छा बाकी रहती है, भले ही आप इंद्रियों को रोक दो खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से और इंद्रिय तृप्ति से, लेकिन फिर भी इच्छा तो बाकी रह जाएगी। फिर यदि इच्छा बाकी रह गई तो फिर योग में आप स्थित हो नहीं सकोगे। इसलिए आगे भगवान बताते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन अगर उस इंद्रियों को हायर टेस्ट दिया जाता है, हाईएस्ट टेस्ट भक्ति का दिया जाता है, तो फिर वो सारी जो आसक्ति है ना भौतिक वस्तुओं की, वो स्वतः चली जाती है। तो भक्ति ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसमें कुछ रोका जाता है, उसमें दिया जाता है, भक्ति का टेस्ट दिया जाता है तो भौतिक टेस्ट स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम या मनोरिधि निरुध्यय, सारे इंद्रियों के द्वारों को संयम करना है और मन को हृदय के अंदर स्थापित करना है, और इस तरह से मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ये हमने पढ़ लिया ना, हाँ आगे पढ़े थे कि इसमें ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित हो जाता है। अब इंद्रियों को वश में किया तो मन भाग नहीं सकता। वास्तव में क्या है, मन के भागने की क्या वजह होती है कि इंद्रियां जो है वो विषयों में लिप्त होती है, फिर इंद्रियों में से जो जो विषय हैं उनमें से किसी एक पर मन स्थित हो जाता है। लेकिन सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया तो मन हृदय में बैठे हुए परमात्मा पर स्थित हो जाता है, और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है, ऊपर ये अज्ञेय चक्र तक प्राण वायु को लेकर जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है, सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो पहले भी छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग बताया था ना, लेकिन अंत में क्या बताया, छठे अध्याय के श्लोक नंबर लास्ट में 47 में भगवान ने कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्त तमो मत। योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं उनमें मत गते नांतरात्मना, मेरे परायण होकर मेरे विषय में सोचता है अंतरात्मा अपने भीतर में, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मुझे मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरे पवित्र नाम का जप करता है, तो समय युक्त तमोमता वही मुझसे सही रीति से जुड़ा हुआ है, योग में सही मुझसे अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर भगवान वापिस से यहाँ पर क्यों योग अभ्यास के विषय में बता रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठता ना, तो भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान वापिस से भक्ति को स्थापित करना चाहते हैं। देखो दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है ना, अब जहाँ पर भगवान तुलना करेंगे ना कि योग देखो कितना मुश्किल है, फिर आगे बताएंगे कि तस्या हम सुलभ पार्थ, कि जो भक्ति करते हैं उनको तो मैं बहुत ज्यादा आसानी से मिलता हूँ, फिर उनको ना ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके सारी इंद्रिय क्रियाओं को रोकना होता है, ना ही अज्ञेय चक्र को सिर पे लगाना होता है, ना ही और कोई ये ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होता है, उन्हें तो खाली क्या करना होता है, अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यसा, कि अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करना होता है, मुझसे प्रेम करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है तस्याम सुलभ। तो भगवान हार्ड प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि दूसरा प्रोसेस भी है, अगर भगवान इसमें डालते ही नहीं तो हमें खबर नहीं पड़ती ना कि दूसरा प्रोसेस भी है। लेकिन अब ये तो मूर्खता होगी ना कि भगवान अगर सुलभ रास्ता भी बता रहे फिर भी हम सोचे कि नहीं हम तो भाई मुश्किल वाले रास्ते पे जाएंगे। तो अभी इसी योग अभ्यास के प्रोसेस का, अभी योग मिश्र भक्ति का जो अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 13, उसको हम पढ़ेंगे। अब भगवान इस योग की पराकाष्ठा बताएंगे कि ये जो योग है, योग मिश्र भक्ति है, उसकी पराकाष्ठा क्या है, उसके विषय में भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 13 में। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। शब्दार्थ ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम, ओम यानी ओंकार, इस तरह एकाक्षरम यानी एक अक्षर, ब्रह्म यानी ब्रह्म का व्याहरण, व्याहरण मतलब उच्चारण करते हैं। अब वो उच्चारण करते हैं किसका, ब्रह्म का एक अक्षर, क्या ओम। व्याहरण का मतलब होता है ऐसे साउंड से जो बहुत गूंजने वाला बोलते ना, इस तरह बोलते ना, तो इस तरह से ओम उच्चारण करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, माम अनुस्मरण, उसके साथ भी भगवान कहते हैं ऐसे नहीं खाली ओम ओम बोलते रहें और मुझे स्मरण नहीं करें तो फिर वापस से प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, स्मरण मेरा करना है, माम अनुस्मरण, मुझको, माम यानी कृष्ण कह रहे हैं मुझे स्मरण करना है। तो ये भगवान बहुत टेक्निकल तरीके से बता रहे हैं कि भले ही तुम निर्विशेषवादी क्यों ना हो, ओम का उच्चारण क्यों ना कर रहे हो, लेकिन स्मरण तो तुम्हें मेरा ही करना है, माम अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब जिस तरह से दूसरे पहले आचार्यों ने किया हुआ है उनसे शिक्षा लेकर आपको स्मरण करना है। और यह प्रयाति, यह मतलब जो, प्रयाति मतलब जाता है, त्यजन देहम, इस शरीर को छोड़ता है, त्यजन मतलब त्यागता है शरीर को, सयाति परमाम गतिम, और इस तरह से वो परम गति को प्राप्त करता है। अनुवाद, इस योग अभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। क्यों ऐसे कैसे बता? ओम इत्येक्याक्षरम ब्रह्म, ओम जो है वो ब्रह्म है, व्याहरण माम उपासरण और इसका उच्चारण करके मुझे स्मरण करता है, यानी कि वो भले ही निराकार रूप में भी स्मरण कर रहा है तो मेरा ही कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है कि मेरा साकार स्वरूप भी है, तो भले ही वो निराकार का कर रहा है, क्योंकि कृष्ण ओम निराकार ये सब एक ही है। लेकिन यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी खास बात बता रहे हैं कि लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोक से किसी एक लोक में जाता है, ये जैसा उसका स्वभाव होगा। अब देखो यहाँ पर बहुत खास बात है कि आध्यात्मिक लोक में किसी एक में जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुरवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ये बात बहुत ही खास है, हमें इसको बहुत ही खास तरीके से समझना है। देखो जो कृष्ण के भक्त हैं, भगवान ने कहा अंतकाली से माम एव और कुछ नहीं, ना निराकार को स्मरण करोगे, ना परमात्मा को स्मरण करोगे, ना किसी अन्य स्वरूप को स्मरण करोगे, माम एव अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव, वो मेरे पास आएगा। भगवान कहते हैं उसको तो मेरे पास ही आना है जो केवल मेरा स्मरण करेगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में जाते हैं, लेकिन सगुरवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं। अब सब लोग की रुचि कृष्ण में कृष्ण को प्राप्त करने में नहीं होती है, कुछ राम के भक्त होते हैं, कुछ नरसिंह के भक्त होते हैं, कुछ विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, तो वो सब भगवान के ही अंश हैं, तो लेकिन फिर भी उनका एक अलग अलग आध्यात्मिक लोक होता है। जैसे श्री राम के लिए साकेत है और ना दूसरे दूसरे गोलोक सॉरी वैकुंठ लोक है विष्णु भगवान के लिए इस तरह से, और नरसिंह भगवान के लिए है, दूसरे दूसरे जितने भगवान के अवतार हैं। अब आपका जिसके अंदर आकर्षण होगा आपको उस भगवान के लोक में, मतलब भगवान के उस आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया जाएगा जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। वो सारे वैकुंठ हैं और मुक्ति एक प्रकार की नहीं होती है, ये बात हमें समझनी है कि मुक्ति पांच प्रकार की होती है, तो उसमें भी जैसा जैसा आपका भाव होगा वैसे वैसे आपकी मुक्ति मिलेगी आपको। सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के लोक में जाना, भगवान के वहां पर अंतरंगा पार्षद बन के रहना, तो या फिर भगवान के अंदर लीन हो जाना, सायुज्य कि भगवान के अंदर लीन हो जाना, वो अलग अलग टाइप की मुक्ति होती है। लेकिन वास्तविक मुक्ति भक्त जो होता है वो इन मुक्तियों के लिए प्रयत्न नहीं करता। भक्त क्या चाहता है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना चाहता है। तो जो जैसे भगवान के साथ जैसा जैसा वो प्रेम का संबंध स्थापित करता है, जैसे कौन से संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जा सकते हैं? सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, या फिर ना दास भाव से, शांत रस से, या माधुर्य भाव से, जिससे भी हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो हम भगवान के पास जाकर उस संबंध में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंतिम शब्द श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में या गोलोक वृंदावन धाम को जाते हैं। सगुरवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहा जाता है, किंतु जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। तो ये जो योग अभ्यास यहाँ पर बताया जा रहा है अब इसमें क्योंकि ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, क्योंकि अंत समय वो ब्रह्म ज्योति का स्मरण कर रहा है, तो फिर वो कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा। उसको यहाँ पर भगवान ने कह दिया वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। अब भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे वो भगवान आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ तक बताने के बाद अर्जुन के मन में ऐसा आया कि ये मार्ग तो बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा विचार आ रहा था। जैसे अभी अगर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं लिखा होता ना, खाली मैं आपको श्लोक बताती ना इसमें क्या लिखा हुआ है, कि पहले श्लोक नंबर 10 में मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भावों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने मन को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर स्थित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। इस योग अभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का परित्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो इतना सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि उस समय तो इतनी विषम स्थिति होती है, इतना कष्ट होता है, ये सारा प्रोसेस तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा किस तरह से इंद्रियों की क्रियाओं को रोकूं, किस तरह से सिर के ऊपर अज्ञेय चक्र को लगाऊं, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके किस तरह से ओम का उच्चारण करूं, ये सब तो होगा ही नहीं मुझसे, जैसे हम सबको ऐसा लग रहा है। तो अर्जुन को भी ऐसा ही लगा कि कृष्ण मृत्यु के समय कोई इतना रिलैक्स में बैठा नहीं रहूंगा कि वहां पर बैठ के योग अभ्यास करने लगूं। तो क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं तो फिर आगे वो बताए कि नहीं, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मैं एक दूसरा मार्ग भी आपको बताता हूँ, वो बहुत स्वीट है और बहुत इजी है और उसके द्वारा तुम्हें बहुत आसानी से परम गति प्राप्त हो सकती है। तो वो कौन सा मार्ग है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।